ओम शांति। जयंती दीदी को तो आप सब जानते हैं, दादियों के संग में पलते, बाबा के नैनों के नूर। हमारी अति आदरणीय जयंती दीदी को हम हार्दिक दिल से स्पार्की ओर से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। जयंती दीदी बाबा की सेवा में समर्पित, अपने जीवन समर्पित किए हैं। आप यूरोपियन और मिडल ईस्ट कंट्रीज के डायरेक्टर हैं और 100 से भी अधिक देशों में दीदी ट्रैवल करते रहते हैं और बाबा के बच्चों को अपने अनुभवों द्वारा उनको लाभान्वित करते रहते हैं और उनको भी बाबा की यादों में उड़ाते रहते हैं। दीदी वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ फेथ के एग्जीक्यूटिव कमिटी के मेंबर हैं और इंटरफेथ फ्रेंडशिप एंड डायलॉग से विश्व समस्याओं को शांतिपूर्वक सॉल्यूशंस देते रहते हैं। आप एनवायरमेंटलिस्ट हैं, उस नाते आप यूएन बायोडायवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज के कॉन्फ्रेंस में अपने वक्तव्य प्रस्तुत करते रहते हैं। आज हमारे बीच दीदी हैं और उनके अनुभवों से हम सबको लाभान्वित करेंगे।
सभा तो बहुत ही सुंदर है और मैं समझती हूँ कि जबकि इस वर्ष में 25 वर्ष मनाने जा रहे हैं, कई ऐसे भी होंगे जो 25 वर्ष से लेकर स्पार्क में शामिल है। कौन है वो हाथ खड़ा करे 25 साल से? मैंने सोचा ज्यादा होंगे। ओके, कुछ कुछ है। तो उसके लिए कंग्रेचुलेशंस। बाकी कुछ सेवा समाचार सुनने को मिला और लगता है कि विश्व में ज्यादा से ज्यादा अभी इन बातों पर रिसर्च होता जा रहा है, तो उसमें अपना भी जो भाग है, जो कुछ बाबा ने सिखाया है और उसको हम फॉलो कर रहे हैं, तो उससे भी बाबा की प्रत्यक्षता का एक और तरीका बन गया है। बाकी तो टॉपिक मिली है गॉड्स हीलिंग पावर, तो ड्रामा अनुसार मम्मा को जब मैं मिली थी, पहले तो बचपन में ही मिली थी, तो उस समय तो प्यार का ही अनुभव रहा, यह है 1957 की बात। फिर उसके पश्चात 1964 में मम्मा के साथ मुलाकात हुई, तो गॉड्स हीलिंग पावर का प्रैक्टिकल सबूत देखने को मिला। कैसे? मम्मा के चेहरे पर बिल्कुल बीमारी का कुछ भी असर नहीं था। उस समय हमारी आयु थी 15 साल की, तो समझ तो उस समय सकती हैं। तो मुझे मालूम था कि मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, परंतु मम्मा ने बड़े प्यार से स्वीकार किया था मुलाकात करने लिए। और जब हम मिले तो मम्मा की बुद्धि भी बिल्कुल क्लियर, कुछ कुछ प्रश्न मेरी माताजी पूछती रही रजनी बहन, और उनके जवाब जो मम्मा देती रही, पता चला कि तबीयत का कैसे भी हो, न मम्मा के चेहरे पर उसका कुछ असर, न मम्मा के समझ सकती के ऊपर कुछ उसका इम्पैक्ट, बिल्कुल बहुत क्लियर आंसर्स मम्मा देती रही। तो हीलिंग पावर का फर्स्ट प्रूफ जो मैंने प्रैक्टिकल देखा वो मम्मा के ऊपर देखा। और फिर रजनी बहन जी कुछ समय ज्यादा रही भारत में और हमें स्कूल में वापस लौटना था लंदन में, तो हम और हमारे छोटे भाई हम जल्दी वापस आ गए। परंतु फिर बाद में रजनी बहन जब मधुबन में गई, मम्मा भी तब तक फिर मधुबन में पहुंच गई थी, करीब सितंबर एंड 1964। तो फिर मदर ने आकर के ये हमें बताया कि उनको बहुत पीठ में दर्द था, शोल्डर्स और बैक में, और मम्मा उस समय रहती थी जहां पर दादी गुलजार का कमरा बाद में बना पांडव भवन में हिस्ट्री हॉल के पीछे। तो मम्मा ने बिल्कुल हाथ ऐसे घुमाया और वो दर्द चला गया। और फिर उसके बाद में उसकी उम्र तो बहुत समय तक पीछे चलती रही, परंतु बाद में कभी वो दर्द वापस नहीं आया। तो मुझे लगता है कि जो बाबा के ऐसे निमित्त बच्चे हैं, उनके हाथों के अंदर भी ऐसे हीलिंग कैपेसिटी है जो कभी उसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं होती, उसका प्रचार नहीं होता, परंतु उनके अंदर हीलिंग पावर बिल्कुल है। तो मम्मा का ये और प्रैक्टिकल उसका प्रूफ हमें मिला। मैं एक बारी ब्राजील में थी दादी जानकी के साथ, और उस समय हम शायद 4-5 दिन वहां पर रहने वाले थे, और पहुंचते ही मुझे बहुत जबरदस्त बुखार हो गया, और बुखार ऐसा था जो बिल्कुल और कोई बात से जाता नहीं था। तो उस समय पहले ये मैंने शब्द सुना, वायरल फीवर। वायरस का तब तक मुझे जानकारी नहीं थी, ये होंगी 1981-82 की बात। तो उस समय दादी पोर्चुगी सुनी बोलती है, और वहां की बहन न हिंदी जानती थी, इंग्लिश भी सीखी हुई थी, उसका नॉर्मल लैंग्वेज मदर लैंग्वेज नहीं था, उसकी लैंग्वेज पोर्चुगीज थी। परंतु दादी का कुछ दिन भर ऐसा उसके साथ चलता था जो वो दादी को समझ जाए और दादी उसको समझ जाए। और फिर शाम के समय जब बड़े प्रोग्राम्स थे, वहां शुरू से ही बहुत बड़ी सभा के प्रोग्राम्स बनते रहे। लैटिन अमेरिका में एक तो भगवान के प्रति बहुत भावना, और दूसरा फिर एक इंडियन वुमन टीचर आए, इट वॉज वेरी अनयूजुअल, इनके लिए बहुत बड़ी बात थी। तो बहुत बड़ी संख्या में लोग आते रहे प्रोग्राम्स में। तो डॉक्टर आता था, बी के डॉक्टर इंजेक्शन लगाता था, आधा घंटा लगता था प्रोग्राम में पहुंचने के लिए, एक घंटे के लिए दादी का भाषण ट्रांसलेशन चलता था। तो मैं हिंदी से इंग्लिश में बहन को सुनाती थी, बहन फिर इंग्लिश से पोर्चुगीज में सभा को सुनाती थी। तो इस तरह से चलता रहा, तो एक घंटा वो चलता। फिर दादी और वो बहन टोली वगैरह का कार्यक्रम करते थे, और मैं निकल आती थी, फिर आधा घंटा ट्रैवलिंग में होता था पहुंचने में। तो वो इंजेक्शन का असर हर शाम को 2 घंटा चलता था। तो वो तो ठीक है, कार्यक्रम तो अच्छे चले, वो प्रोग्राम्स हो गए। फिर 3rd-4th दिन कुछ ऐसे था, तो हम सोच रहे थे कि अभी दादी और हमारा प्रोग्राम था वर्जिन आइलैंड्स में, सेंट थॉमस में जाने का। तो वहां अपना चंद्रू बहन जो पुरानी है, उनको मालूम होगा, रोजी बहन का भाई, उनके पास जाना था। तो सीधी फ्लाइट नहीं थी, साओ पाउलो से जाना था वेनेजुएला, वेनेजुएला से चेंज करके फिर दूसरी फ्लाइट लेनी थी वर्जिन आइलैंड्स के लिए। तो दादी उन दोनों में इतनी ट्रैवलिंग अकेली करे वो भी नहीं जचता था। तो मैंने दादी को कहा कि शायद हमें मोहिनी बहन को बुलाना होगा, न्यूयॉर्क से वो आए और फिर वो आपके साथ चले। तो दादी ने कहा कि एक रात और है, देखते हैं। फिर सवेरे 4 बजे दादी योग कराने के लिए जा रही थी, तो मुझे देख करके, और सारी रात बुखार तेज होता था तो नींद भी नहीं आती थी, दादी ने ऐसे अपना हाथ सिर पर घुमाया, और लगता था कि बहुत बहुत एक शीतलता का अनुभव हो रहा। और दादी तो गई, और वो फर्स्ट टाइम इतने दिनों के बाद मुझे अच्छी नींद आई। फिर दादी वापस लौटी, क्लास कराने गई, कुछ पता नहीं चला। फिर दादी क्लास के बाद फिर मेरे पास आई, तो पूछा कि कैसे हो। मैंने कहा दादी बुखार चला गया है। और उस रात्रि को फिर दादी के साथ ट्रैवलिंग करने के लिए हिम्मत थी, और फिर तो प्रोग्राम सेंट थॉमस में भी बहुत अच्छे चल रहे थे। तो प्रैक्टिकल फिजिकल हीलिंग पावर क्या होती, भगवान की शक्ति न सिर्फ मम्मा के द्वारा, परंतु ये तो मैंने एक दादी का अनुभव सुनाया, परंतु कईयों के पास तो अनेक और दादियों का भी अनुभव होगा कि उनके हाथ में भी ऐसी कुछ शक्ति है जो औरों को भी हील कर सकते। और बाकी दादी जानकी के संग 40 वर्ष रहने का चांस मिला विदेश में, और उससे पहले कुछ समय पूना। तो मैं दादी को जानती हूँ 1957 से। कितने बारी मैंने सुना होगा कि दादी की बहुत नाजुक तबीयत है, दादी बिल्कुल जाने की घड़ी पर है, परंतु बाबा की हीलिंग पावर, फिजिकल हीलिंग पावर कुछ ऐसी है जो दादी फिर से कभी एक सप्ताह, कभी एक मास साइलेंस में रह करके फिर बिल्कुल न्यू लाइफ हो जाती। मैं गिनती नहीं कर सकती हूँ कितनी बारी ये मैंने कमाल देखी होंगी, और हर समय मैं सोचती हूँ कि अभी तो दादी की बहुत लंबी आयु हो गई है। एक एग्जाम्पल है, जब दादी 100 वर्ष की होने वाली थी तो कईयों को थोड़ा संकोच था कि विदेश में हिसाब किया जाता है व्हेन अ बेबी इज बोर्न 0 इयर्स ओल्ड, देन इट्स 6 मंथ्स, 8 मंथ्स, 9 मंथ्स, फिर जब उसका एक वर्ष पूरा होता तो कहते हैं नाउ द बेबी इज 1। तो फिर उस हिसाब से जब हर एक का वर्ष पूरा होता तो हम गिनती करते हैं 50 ईयर्स, 60 ईयर्स, जो भी कुछ है। तो दादी का भी जब 100 वर्ष होने वाला था तो हम लोग तैयारी कर रहे थे, 100 ईयर्स पूरा होगा तो हम मनाएंगे। तो कईयों ने कहा कि नहीं, 100 ईयर्स शुरू जब होता है तो मनाया जाए। ओके, तो उनको ये संकल्प था कि पता नहीं 100 ईयर्स पूरा होने तक दादी होंगी या नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है खूब मनाओ। तो फिर उसने स्लोगन बनाया था Stepping into 100। आप लोगों को याद होगा कि ज्ञानश्रो में वो बैनर लगा हुआ था Stepping into 100। तो भगवान के हीलिंग पावर दादी के लिए भी प्रैक्टिकल मैंने कई बारी देखी है, कितने बार देखा है। परंतु कल भी संदेश दादी का आया, परसों भी आया, तो मैं देखती हूँ कि भगवान की मदद तब मिलती जबकि अपना मन और बुद्धि योग भगवान के साथ जुड़ा रहता। तो हरेक कहे कि मैं बहुत बीमार थी और भगवान की कुछ मदद ही नहीं अनुभव हुई, उसके भी कारण होते। परंतु जब दिल के अंदर एक ही बसा हुआ है, मन और बुद्धि का योग एक के साथ ही जुड़ा हुआ है, तो वो शक्ति मिलती और हर प्रकार से फिजिकल हीलिंग का भी अनुभव हो सकता। फिजिकल बात लास्ट में बताती, देन वी विल टेक अप अदर थिंग्स। दादी शायद करीब 85-90 समथिंग लाइक दैट, इस प्रकार से उन्हों की आयु होंगी। तो ऑक्सफोर्ड के रिट्रीट सेंटर पर मिडल ईस्ट का ग्रुप आया हुआ था और उसमें लेबनन का ग्रुप था, और एक भाई उसमें था जिसने रिट्रीट से बहुत फायदा उठाया था, लगता था कि उसको बहुत प्राप्ति हो रही है। तो उसने मांगने की कि मैं आकर के 2 दिन लंदन में दादी के पास रहूं। तो छुट्टी दे दी, प्रबंध हो गया, फिर दादी के साथ उसकी इंटरव्यू चली पर्सनल। तो कई प्रश्न उत्तर चलते रहे, फिर उसने प्रश्न पूछा कि आपको मालूम है मैं डॉक्टर हूँ परंतु किस प्रकार का डॉक्टर हूँ। मैंने कहा बताइए। तो कहा कि मेरी एजिंग क्लिनिक चलती है बेरूत में, तो वहाँ पर हम लोगों की आयु लंबी कैसे हो, तबीयत कैसे हो, ये सारी स्टडी भी करते हैं और उनको इलाज भी देते हैं। तो कहता है कि दादी की ब्रेन को मैं देख रहा हूँ, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे। कहता है कि जो मैंने क्लासेस सुने और अभी ये जो 2 दिन से पर्सनल बहुत नजदीकपन का दादी के साथ अनुभव रहा है, मैंने 3 बातें दादी के लिए देखी है जिस कारण से मैं सोचता हूँ कि इस हिसाब से इस उम्र में दादी की बुद्धि अभी तक इतनी क्लियर है। क्योंकि आप जानते हैं कि मैं समझती दादी का, दादी गुलजार, दादी जानकी का बहुत आपस में फिजिकल कनेक्शन भी चलता रहा है। 2014 में एक दादी गिरी, दूसरी दादी गिरी, फिर 2015 में उन दोनों का कुछ बहुत पार्ट चेंज हो गया, होता रहा। तो कहता है कि तो दादी के क्लासेस तो 2014 के बाद भी चलते रहे, परंतु ये जो 2 दिन दादी आईसीयू में थी, फिर अभी हॉस्पिटल में अभी भी है, परंतु जो दादी के मुख से निकल रहा है प्योर ज्ञान, दैट्स इट। दर्द की बात, दुख की बात, कुछ बात, नथिंग, प्योर ज्ञान। वो सर्कुलेशन में आया है हिंदी में भी, तो वो आप लोगों को यदि मिला नहीं है तो मिल जाएगा। परंतु राजू भाई ने तो परसों भी भेजा है, कल भी भेजा, शायद मिला भी होगा, मिल गया है। तो उसी से ही आप देख सकते हैं कि मनन चिंतन बिल्कुल कांस्टेंट, नथिंग एल्स। तो उसने जो डॉक्टर ने तीन बातें बताई, उसने कहा कि एक तो मैं देखता हूं कि यदि सीखने की भावना होती है, लर्निंग इंटेलेक्ट, तो उसमें ब्रेन सदा ही फ्रेश रहती है, वो उसमें बुढ़ापा नहीं आता, लर्निंग इंटेलेक्ट। और दूसरा फिर कहा ऑलवेज पॉजिटिव थिंकिंग, कभी भी नेगेटिविटी में जो ब्रेन जाती है उसमें एजिंग कैपेसिटी बढ़ती जाती है, परंतु एजिंग बढ़ती जाती है, कैपेसिटी नहीं, एजिंग बढ़ती जाती है और कैपेसिटी रिड्यूस होती जाती है। परंतु जिसके अंदर वो पॉजिटिविटी कांस्टेंट रहती है तो उसके लिए हमेशा वो कैपेसिटी बहुत अच्छी रहती है। हिंदी मेरी भाषा नहीं है तो थोड़ा संकोच होता है कुछ कुछ बोलने में। तीसरी बात फिर कहा हर एक के लिए गुड विशेस है, जिसके साथ भी दादी मुलाकात करती है, गुड फीलिंग्स, गुड विशेस। तो मैं देखता हूँ कि ये तीन बातों के कारण दादी की ब्रेन फंक्शन बहुत एक्सलेंट है, परंतु साथ ही साथ दादी की आयु भी लंबी बढ़ती जा रही है। तो भगवान की याद की शक्ति द्वारा किस तरह से कैपेसिटी बढ़ती है, हीलिंग पावर होती है फिजिकल लेवल पर, वो हमारे सामने बहुत ही बड़ा प्रूफ है। कभी कभी दादी पूछती है न कि मुझे बाबा ने क्यों यहाँ अब तक रखा है, तो हम सोचते हैं कि एक व्यक्ति के लिए नहीं, दस व्यक्ति के लिए नहीं, परंतु विश्व के लिए एक एग्जाम्पल बन करके दिखाए कि भगवान की हीलिंग कैपेसिटी क्या होती। बाकी तो आप सोचो कि हर एक को ये अनुभव होगा कि जैसे आज भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, इमोशनल हीलिंग जो है, बाबा की बहुत अच्छी ये लाइन थी कि बाबा की गोदी में बैठ जाओ, याद में लवलीन हो जाओ, तो फिर कई जन्मों का दुख मिट जाता। तो आत्मा के अंदर, हर आत्मा के अंदर, सभी हम कलयुग में हैं, कोई उससे छूटा हुआ नहीं है, तो कितने जन्मों का, कितना हिसाब किताब, कितना दुख आत्मा के अंदर समाया हुआ होगा। तो एक एक बात को हम वन वन वन, एक एक जन्म को हम उठाते जाएं, कितना लंबा समय चाहिए उस बात को, हिसाब को चुकतू करने के लिए या उसको समझने के लिए भी। परंतु बाबा के लवलीन स्थिति में, बाबा के प्यार के भावना से अनेक जन्मों का जो कुछ दुख आत्मा के अंदर भरा हुआ था वो डिसॉल्व हो जाता है, वो बिल्कुल मिट जाता। तो जबकि आत्मा के अंदर दुख मिट जाता तो फिर आत्मा जो भगवान का प्यार और सुख प्राप्त करती है, फिर उसके द्वारा अनेक आत्माओं को सुख देने का कार्य हो सकता। ये प्रैक्टिकल बात है कि जिसके अंदर अभी तक भी कोई भी बात का दुख होगा, चलो पूर्व का तो अनेक जन्मों का बाबा ने ले लिया, परंतु इस जन्म में भी अभी तक हम छोटी मोटी बातों से दुख उठाते रहते हैं, वो अपने में हम रखते जा रहे हैं, तो वो जब दुख की अंदर वो मर्ज है अभी तक, तो वो दुख के कारण जो बाबा हमारे द्वारा सेवा करानी चाहता वो नहीं हो पाती। मुझे याद आता है कि एक बहन को किस बात का, उस बहन को कोई कारण से बहुत अंदर दुख चला गया था और दो दिन तक तो किसी से मिलने ही नहीं चाहती थी। फिर तीसरे दिन मैं फिर गई उसके पास तो दरवाजा खोला और मिली, तो एक तरफ रो रही थी, दूसरे तरफ अपने ऊपर हंस रही थी। तो मैंने कहा आखिर हुआ क्या, तो थोड़ा उसने सार में बताया कि क्यों उसको इतना दुख हो गया था। मैंने कहा कि फिर बाबा ने तुमको कैसे ठीक किया, तो कहा कि मुझे एक ही फिर संकल्प आने लगा कि इस हालत में मैं औरों की सेवा कैसे कर सकेंगी, मैं औरों को सुख देने का कार्य कर नहीं सकेंगी। तो मैंने बाबा को कहा कि बाबा अभी मुझे इस बात को छोड़ना है। तो फिर बाबा ने जैसे कि उस दुख को मिटाया और फिर सेवा के संकल्प से ही फिर मैं ठीक हो गई। तो कहने का मतलब, जबकि आप सोचो कि सेवा का लक्ष्य ही क्या है कि औरों को हम सुख और शांति दिलाएं बाबा के द्वारा, और यदि हम खुद कोई भी बात के कारण किसी बात के दुख को उठा करके पकड़ के रखा है, जब तक उसको छूटा नहीं है, छोड़ा नहीं है, तब तक वो जो हमारे अंदर सुख और शांति आए तो वो हम किसी और को दे नहीं सकते हैं। एक और एग्जांपल मैं देती, एक भाई था, बहुत ही पावरफुल व्यक्ति, ज्ञान में कुछ समय से चला और बहुत फास्ट उसकी प्रोग्रेस थी। अभी तक वो ज्ञान में बहुत आगे बढ़ रहा है, सेवा में भी। तो उसने दादी को अपनी देव की बात बताई, कहा कि तीन लोगों ने मुझे जीवन में बहुत ही दुख दिया है और मैं और सबको फिगिव कर सकता हूँ, परंतु इन तीन को मैं नहीं फिगिव कर सकता हूँ, तो मैं क्या करूँ। तो दादी ने उसको बताया कि तुम जब तक तीन को भी अंदर दिल में रख के बैठे हैं, क्योंकि आपने उनों को छोड़ा नहीं है और अभी तक आपको उनों के दुख की फीलिंग है जो आप फॉरगिव नहीं कर सके हैं, तो तब तक बाबा को आप कौन सी जगह दे सकेंगे। तो उसने उस बात को स्वीकार करके पुरस्कृत किया। एक वर्ष के बाद फिर दादी से मिला तो दादी को बोले कि दादी बहुत अच्छी बात आपने कही, मैं समझ गया, तो दो को तो मैंने छुट्टी दे दी है, परंतु तीसरी उसने मुझे बहुत धोखा दिया, बहुत दुख दिया, मैं उसको कभी नहीं फिगर कर सकता हूँ। तो दादी ने उसको बोला, अच्छा मैं आपको पानी का ग्लास देती हूँ और बस एक बूंद मैं उसमें पॉइजन डालू, आप उसको पिएंगे? तो आप कहते हो कि सिर्फ एक को मैंने फॉरगिव नहीं किया है, परंतु उस एक बात के कारण वो आपके मन में पॉइजन है, तो वो पॉइजन न सिर्फ उस एक के प्रति आपका संबंध औरों के साथ उसमें कुछ न कुछ मिलावट हो जाती, परंतु सबके साथ मिलावट हो जाती उस एक ड्रॉप ऑफ पॉइजन के कारण। तो जब तक आपने बाबा से इतना प्यार लेकर के अपने दिल को इतना बड़ा नहीं किया है, अपने दिल को इतना साफ नहीं किया है, तब तक आपके और संबंधों में भी सुधार नहीं आ सकती। तो उसने कहा, हाँ समझ रहा हूँ, अभी इस बात पर और अधिक पुरस्कृत करूँगा। तो फिर नेक्स्ट ईयर फिर आया दादी के पास, हाँ मैंने इस बात पर अच्छा ध्यान रखा है और बाबा के प्यार से इतनी शक्ति मिली जो मैं उस बात को भी छोड़ सका। कुछ पुराना बहुत लंबा हिसाब किताब होगा जो ऐसी बातें चली, तो अभी मैंने उसको भी छुट्टी दे दी, ये समझ गया कि हिसाब किताब था जो उसको मेरे से लेना था उसने ले लिया, बस सभी फिनिश। अभी मैं उसको ज्यादा नहीं रखता हूँ मन में, अभी बाबा को ही हमने मन में रखा है। उसके बाद उसकी जो सेवा की रूपरेखा चलती रही, विश्व भर ने उस आत्मा ने सेवाएं की है, तो देखते हैं कि जो दिल की हीलिंग की बात आती है वो भी बाबा के प्यार से। वैसे भी कहते हैं कि प्यार एक ऐसी शक्ति है जिसके अंदर हीलिंग कैपेसिटी है, तो परमात्मा को भी, जबकि है ही वो सुप्रीम, तो वो जो सुप्रीम प्यार मिलता है तो वो आत्मा को हील ऐसे करता जो बिल्कुल सब बातें उसमें से छूट जाती। तो भगवान की हीलिंग कैपेसिटी अपने दिल की बातें का, परंतु सबसे ऑफ कोर्स जो मुख्य बात है अपने संस्कार। अपने संस्कार ही हमें कई बारी दुख देते हैं, धोखा देते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग बात आज भी मुरली में थी कि धोखा मिल जाता, अपने ही संस्कार वश हम पहचान नहीं पाते हैं कि क्या गलत हो रहा है और फिर उस बात में हम फंस जाते हैं, तो फिर खुद को ही धोखा अथवा दुख की प्राप्ति होती। बाबा बुद्धि की बात कह रहा था कि कहां न कहां पुरानी तरफ फिर से आकर्षित हो जाते हैं, परंतु संस्कारों की बात है, कहां न कहां संस्कार किसी पर अधीन है, कहां न कहां संस्कार है किसी के ऊपर डिपेंड करने का, तो फिर उन संस्कारों के कारण फिर धोखा भी होता तो दुख भी होता। तो संस्कार परिवर्तन कैसे हो सकते हैं? एक बाबा ही संस्कार परिवर्तन का तरीका हमें न सिर्फ बताते हैं परंतु प्रैक्टिकल हमें वो शक्ति देते हैं जिससे वो पुराने संस्कार फिनिश हो सके। तो उसमें भी जो आत्मा की हीलिंग हो जाती है संस्कार परिवर्तन से, वो सिर्फ एक परमात्मा ही कार्य कर सकता। कई मेरे से पूछते हैं कि साइकोलॉजिस्ट साइकाइट्रिस्ट क्या ये काम नहीं कर सकते, तो साइकोलॉजिस्ट साइकाइट्रिस्ट खुद ही कहते हैं हम किसी को भी समझा सकते हैं कि आपका कारण क्या है इस बात का दुख आने का। मैं वो जनरली बात कर रही हूँ, परंतु मेन बात तो ये कहते हैं कि हम उनको समझा सकते हैं कि इस कारण से, परंतु उस कारण को हम मिटा नहीं सकते हैं। तो किसी ने इंग्लिश में ये शब्द कहा, इट्स लाइक चेंजिंग द फर्नीचर इनसाइड द रूम, यू कैन मूव द फर्नीचर अराउंड बट यू कांट गेट रिड ऑफ इट। वो बातों को समाप्त नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत उसमें परिवर्तन ला सकते हैं। और हाँ, उन्हों का भी जो काम है, जो यहाँ साइकाइट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट जो बैठे होंगे, मैं ये नहीं कहती कि उन्हों का यूजफुल काम नहीं है, बहुत ही यूजफुल है, ये भी मैं मानती हूँ। परंतु संस्कार जो चेंज हो जाए, डिपेंडेंसी के संस्कार, अटैचमेंट के संस्कार, पोजेसिवनेस के संस्कार, कोई भी संस्कार, परंतु ये संस्कार बहुत ज्यादा है, धोखा भी देते हैं, दुख भी देते हैं। और बाबा जैसे आज कहा, एक की स्मृति से आत्मा नष्ट मोहा सहज बन सकती। नहीं तो आप मोह को नष्ट करने के लिए सोचो कितनी बातों में वो फंसे हुए होते हैं आत्मा, परंतु उन सब बातों से छुटकारा प्राप्त हो डिफिकल्ट। परंतु एक याद को, स्मृति को बढ़ाते जाओ, स्मृति स्वरूप बन जाओ, तो फिर वो जो मोह की बातें थी वो खत्म हो जाती। तो ये सब बातें जो संस्कार परिवर्तन की बातें हैं, हीलिंग कैपेसिटी है, ये भगवान की शक्ति में, भगवान के अंदर, और किसी के पास नहीं। और उसके कनेक्शन से एक और बात जो बाबा ने वैसे पॉलिटिशियंस और बाहर की जनता के लिए बताई, परंतु ये भी बात मैं मानती हूँ कि कई ब्राह्मणों को ये बीमारी भी लगी हुई है, और पुरुषार्थ कहीं करते भी हैं, और कहीं इस बात को मानते भी नहीं है कि मुझे ये बीमारी है, और वो है जेलसी। किस बात में हम जेलस है? सब कुछ है। एक तरफ से तो कहेंगे कि ब्राह्मणों के भंडारे में कोई अप्राप्त वस्तु नहीं, सब कुछ बाबा ने दिया है। परंतु मैं समझती करीब 3-4 सप्ताह पहले एक मुरली थी जिसमें बाबा का पर दर्शन, पर चिंतन, ये बातें चली थी। तो उसमें बाबा ने जेलसी पर बताया था कि जब खुद को नहीं देखते हैं, औरों को देखते हैं, ध्यान उस तरफ चला गया, मुझे क्या प्राप्ति हुई है वो मुझे नहीं पता चलता। एटलीस्ट वो बात हमसे खिसक जाती है, हम भूल जाते। औरों की प्राप्ति को हम देखने लगते हैं कि उसको ये, उसको ये, उसको ये, छोटी बात, बड़ी बात, कई बातों में आ सकती है। परंतु जब पर दर्शन पर ध्यान चला गया, स्वर का दर्शन समाप्त हो गया, तो वो जो कंपैरिजन चलती है, फिर उस कंपैरिजन में आत्मा को एक तो दुख भी होता, परंतु फिर उस कारण से जो गलत व्यवहार होने लगता, आत्मा को उस समय ये पहचान नहीं होती कि ये हमसे गलती हो रही है। विवेक जैसे कि बंद हो जाता, बुद्धि को बाबा शब्द तो स्ट्रॉन्ग कहते हैं, ताला लग जाता, परंतु रियली वो जो बुद्धि समझ सके कोई बात, उसके समझ से बाहर हो जाती है। फिर उसको कहो कि, और हम न्यूट्रल है, हम देख रहे हैं कि उसका व्यवहार औरों से कुछ ठीक नहीं है, उसको इशारा भी दे रहे हैं कि ये तुम्हारा व्यवहार कुछ थोड़ा सुधरना चाहिए, कुछ उसमें परिवर्तन होना चाहिए, तो उसका जवाब क्या आता? आई कांट सी इट, मुझे जो आप कह रहे हो ये देखने को ही नहीं आ रहा, वो मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ, आप क्यों मुझे ये कह रहे हो? इट्स वेरी क्लियर, परंतु उसको खुद को देखने को नहीं आ रहा। तो जब तक उस आत्मा ने नम्रता से बाबा से वो शक्ति नहीं ली है, तब तक ये जो बीमारी है वो मिट नहीं पाती। और जब तक आत्मा ने खुद फिर से वो पुरुषार्थ शुरू नहीं किया है स्व के दर्शन का और बाबा से फिर वो प्यार की प्राप्ति लेने का, तो वो बीमारी चलती रहती है और उस आत्मा का फिर बहुत होशियार भी है, बहुत कलाएं भी है, परंतु जो वो चाहते हैं वो नहीं हो पा रहा। तो बाबा की मुरलियां इतनी क्लियर है, जो कोई और आपको समझाए आप ना भी समझो, परंतु यदि मन में भावना है कि बाबा जो हमें परिवर्तन करनी चाहता है, जो अंदर की बीमारियां जन्म जन्मांतर से चलती आ रही है, वो बाबा के प्यार की शक्ति से अभी हमको निकालनी है, फिनिश करनी है, तो जब तक ये पक्का दृढ़ संकल्प नहीं है तब तक वो परिवर्तन नहीं हो पाता। परंतु संस्कार परिवर्तन, ये एक भगवान की हीलिंग पावर सबसे बड़ी है, जो आज तक संसार में किसी के पास वो शक्ति नहीं है। तो ये कुछ गॉड्स हीलिंग पावर पर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी तो ये भी कहा कि जो आजकल विदेश में कुछ रिसर्च चल रहा है बाहर वालों का, उसके प्रति मैं आप लोगों को कुछ बातें बताऊं। दो टॉपिक्स को मुझे उठाना है इसमें, एक तो पहले जो कई बातों की बहुत अच्छी रिसर्च विदेश में चल रही है, जैसे कि काइंडनेस, काइंडनेस क्या है उस पर रिसर्च चल रहा है, जेनरोसिटी, कंपैशन, लव, ये चार टॉपिक्स पर रिसर्च वहाँ बाहर वालों की चल रही है और बहुत ही इंटरेस्टिंग उसके ऊपर वो रिसर्च करते जा रहे हैं। काइंडनेस का एक मैं एग्जांपल बताती हूँ। कुछ समय पहले ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ये रिसर्च चली थी, तो उन्होंने एक गेम रखी थी और ग्रुप्स बनाए हुए थे, छः छः का ग्रुप था और उसमें एक एक ग्रुप को उन्होंने कहा था कि आप अपनी आइडियल सिटी बनाओ। सब बहुत होशियार प्रोफेशनल क्वालिटी के लोग थे और उनको एक एक को पैसा दिया गया था, इट वाज अ गेम, परंतु एक एक को पैसा दिया गया था कि उसमें से आप लोग अपनी आइडियल सिटी बनाओ। और हर एक को कहा गया था, देयर इज आल्सो अ कम्युनिटी चेस्ट जिसमें चैरिटेबल काम के लिए भी आपकी सिटी के लिए बजट हो। तो हर एक ने कम्युनिटी चेस्ट में किसने 1%, 5%, 10% इस तरह से डाला, ज्यादा 10% से किसी ने भी नहीं डाला। तो उन्होंने एक एक्टर को बुलाया, एक्टर को एक ग्रुप में बिठाया और एक्टर को बोला कि तुम 25% कम्युनिटी चेस्ट में डालना। तो पांच लोग और थे, उनको मालूम नहीं था कि ये कोई एक्टर है, परंतु उसने 25% कम्युनिटी चेस्ट में डाला। पांच और ने देखा और उस फिर कम्युनिटी चेस्ट से उस सिटी को और बहुत अच्छी बातें आ गई, तो उनको बहुत पसंद आई बात। तो वो जो पांच थे फिर नेक्स्ट टर्न में डिफरेंट लोग थे उनों के साथ, तो पांच लोग पांच ग्रुप्स में गए, पांच ग्रुप्स में उन्होंने 25% डाला और फिर जो वो लोग थे वो फिर नेक्स्ट टर्न में ग्रुप में गए, वो सभी लोगों ने 25% डाला। तो उन्हों का ये भाव निकला कि यदि कोई भी एक व्यक्ति एक एक्ट ऑफ काइंडनेस करता, उसका इम्पैक्ट 125 लोगों के ऊपर पड़ता। तो संसार का परिवर्तन करना कितना सहज है, एक एक व्यक्ति कितने लोगों के संपर्क में आता, 125 के संपर्क में तो आते ही हैं, परंतु जिनों को आप प्रभाव डालते हैं उनों का औरों के ऊपर भी प्रभाव पड़ता, तो वो काइंडनेस का असर कितना इम्पैक्ट हो जाता है, स्प्रेड होता जाता। तो इस प्रकार से वो लोग अपने दिमाग को किस तरह से चलाते हैं, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। परंतु जो बाबा का ज्ञान है उसको स्पष्ट करते जा रहे हैं। फिर एक और भाई है जो मधुबन में आया था करीब 15 वर्ष पहले गेस्ट होकर के पीस ऑफ माइंड रिट्रीट में। तो उसने पूरा ही 7 डेज कोर्स यहाँ किया था, पीस ऑफ माइंड रिट्रीट में ऐसे ही होता। फिर वो वापस लौटा, वो स्कॉटलैंड का है, और उसने काइंडनेस के ऊपर और रिसर्च की खुद अपनी, क्योंकि वो पहले था मेडिकल ब्रांच में। तो वो देखता था कि कितनी भी मेडिसिन्स दियो तो मेडिसिन्स का इतना इम्पैक्ट नहीं हो रहा। तो उसने सोचा कि कुछ और बातों का इम्पैक्ट हो रहा है। तो उसने अपनी जांच और की, जांच करते करते उस बीच में यहाँ भी आया, कुछ बाबा की बातें भी सुनी, उसको जची। फिर उसने और अधिक रिसर्च किया ताकि उसको पता चले। तो कहता है कि काइंडनेस से तबीयत पर बहुत इम्पैक्ट आता है पॉजिटिव उसका। तो उसने सारा अपना वो रिसर्च करके ही बताया है कि काइंडनेस का किस तरह से तबीयत के ऊपर भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता। कंपैशन के ऊपर भी रिसर्च कर रहे हैं कि कंपैशन है निज संस्कार मनुष्य आत्मा का। जानवरों में भी कंपैशन है और उन्हों को कोई सिखाया नहीं जाता, तो उससे भी ये प्रूफ करते हैं कि कैसे मनुष्य का निज संस्कार है कंपैशन। परंतु फिर आज के मटेरियलिज्म के कारण वो कंपैशन, वो काइंडनेस दब गया है, और फिर उसको कैसे प्रकट करना होता। तो ये सब बातें अपनी बहुत काम की होती है, क्योंकि लोग हर बात में चाहते हैं ना, प्रूफ चाहिए, प्रूफ चाहिए। तो ये जो रिसर्च चल रहा है, इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। परंतु सबसे और इंटरेस्टिंग बात ये है, इसमें मैं किसी को डराने नहीं चाहती हूँ, परंतु लोगों के लिए तो ये डराने वाली बातें हैं। एक प्रोफेसर है जिसका नाम है प्रोफेसर जेम बेंडल, JEM BENDELL बेंडल। उसका यूट्यूब पर बहुत सारी बातें हैं। तो उसने 2017 में एक वर्ष अपनी छुट्टी ले रखी थी यूनिवर्सिटी से। पहले वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में था, फिर वो बहुत वर्ष से कैम्ब्रिया यूनिवर्सिटी में है। और उसका एक साल की उसने छुट्टी ली है, उसे प्रोफेसर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो 2017 में उसने ये सबैटिकल लिया और अपने कुछ स्टूडेंट्स को भी अपने साथ मिलाया रिसर्च करने की, ये जो क्लाइमेट चेंज की बातें हैं वो क्या चल रही है, वास्तविकता क्या है। तो पूरा वर्ष उसने सारा जो लेटेस्ट डेटा थी, साइंटिफिक डेटा क्लाइमेट चेंज की, उसने वो स्टडी की। खुद ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एनीवे प्रोफेसर था, परंतु मेल्टिंग ऑफ द आइस, ग्लेशियर्स मेल्टिंग, ओशंस का जहां तक समाचार है उसकी स्टडी, डिजर्टिफिकेशन का कहाँ तक है, फिर ये जो स्पीशीज एक्सटिंक्शन है वो कहाँ तक है। तो उसने जो सारा स्टडी किया 2018 में, एक वर्ष के बाद उसने अपना जो जर्नल आता है उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट का उन्हों को दिया। परंतु पीयर रिव्यू होता तो और साइंटिस्ट ने रिफ्यूज किया उस पेपर को। नाम पेपर का है डीप एडाप्टेशन, उस नाम से आप ढूंढेंगे आपको वो पेपर मिल जाएगा, 30 पेज का आर्टिकल है। तो उन्होंने कहा कि ये बातें तुम जो लिखी है लोगों को डराने वाली बातें हैं, और ये बातें हम नहीं पब्लिश करनी चाहते हैं, और दूसरों ने कभी ये बातें बताई नहीं है। तो उसने उसका जवाब दिया, क्योंकि उसके कई पेपर्स उसी जर्नल में पब्लिश हो चुके थे, तो उसने जवाब दिया कि यू आर लुकिंग फॉर न्यू रिसर्च, तो ये मैंने न्यू रिसर्च किया है जो आज तक किसी ने नहीं किया है। तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि अब तक किसी ने नहीं बताया? उन्होंने रिसर्च नहीं किया तभी नहीं बताया है। तो आप मुझे बताओ कि मैंने किस बात में गलत प्रेमिस लिया है। तो बता नहीं सके, परंतु फिर भी वो पब्लिश नहीं करनी चाहता था, चाहते थे। फिर इसने इंडिपेंडेंट पेपर वो पब्लिश किया, परंतु उसमें उसने साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट से भी बातचीत करके फिर पब्लिश किया। तो उन्होंने कहा कि डीप एडेप्टेशन का उसका भाव ये है कि अब जो क्लाइमेट चेंज की बातें हैं उसको हम टाल नहीं सकेंगे, इट्स नाउ इरिवर्सिबल। अभी तक जो कुछ ये 1972 से लेकर साइंटिस्ट ने वार्निंग्स दी है क्लाइमेट चेंज की, कितने वर्ष हो गए, उसके बाद बातें बढ़ती गई है बढ़ती गई है। क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंसेस में साइंटिस्ट बिल्कुल आमने सामने से गवर्नमेंट्स को कहते हैं, वी बीन टेलिंग यू दिस फॉर सो मेनी ईयर्स, यू हैव नॉट लिसन्ड, नाउ वी आर रीचिंग द पॉइंट। पब्लिक में ये नहीं कहते इट्स इरिवर्सिबल, कहते हैं वी आर नियरिंग द पॉइंट वेयर इट्स इरिवर्सिबल। वो लोग ऐसी भाषा बोलते हैं बहुत करके, और अभी तक वो लोग मानते हैं कि हाँ हम कुछ चेंज कर सकते। इसने जो कंक्लूजन्स निकाली कि इट्स नॉट पॉसिबल, अभी वो इरिवर्सिबल है, तो उसने सोल्यूशन क्या बताया है। सोल्यूशन ये बताया है कि मैं ये मानता हूँ कि जो कुछ होगा मैस एक्सटिंक्शन होगा ह्यूमन रेस का, बाकी थोड़े थोड़े पॉकेट्स होंगे जहाँ पर लोग बचेंगे, परंतु उनकी बिल्कुल प्रिमिटिव लाइफस्टाइल होंगे, परंतु जहाँ कम्युनिटी मजबूत है वो कम्युनिटी एक दूसरे को सहयोग देंगे एंड दे विल सर्वाइव। तभी वो सर्वाइवल, बेसिक सर्वाइवल की बात बता रहा है। तो उनसे हम लोगों ने कॉन्टैक्ट किया लास्ट ईयर जुलाई 2019 में, वो हमारे पास आया और उसको हमारे साथ एक घंटा बैठना था, अढ़ाई घंटा बैठा, क्योंकि उसको, जबकि उसको मालूम है आगे क्या होने वाला है, उसको बाबा के विजन्स बताए, उसको जो हम कार्य कर रहे हैं वो बताए, वो कहे कि आप मेरे साथ प्लेटफॉर्म शेयर करेंगे। मैंने कहा नहीं, क्योंकि आप बता रहे हैं इट्स लाइक डूम्स डे, और हम लोग कहते हैं कि नया संसार की तैयारियां हो रही है। We don't want to be called a doomsday cult because we are not that. हम लोगों का है सत्य की स्थापना का कार्य। तो कहता हाँ मैं समझ सकता हूँ आपको। फिर आज ही मुझे एक उससे ईमेल आया है, क्योंकि उसने अपनी एक संस्था बनाई है, तो संस्था में उस लक्ष्य से कि और आगे हम लोग क्या तैयारियां करें और कैसे लोगों को बताएं। मैंने उसको ये भी कहा कि हम, फिर कहता है कि हाउ कैन वी कोलैबोरेट, तो मैंने कहा कि आप यदि हमको बुलाएंगे कि योग द्वारा हम कैसे आने वाले डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस में अपना तैयारी रख सकते, हम आएंगे, बाकी डूम्सडे की बातों के लिए हम नहीं आएंगे। बट हाउ टू प्रिपेयर रिजिलियंस, हाउ टू प्रिपेयर आर सेल्व्स टू कोप विथ चेंज अडाप्टेशन, ये हम कर सकते। तो उसने अभी भी लिखा है कि जो मैंने अपनी संस्था बनाई है, मैं अभी तक विचार कर रहा हूँ कि कैसे आपके साथ मेरा लिंक बना रहे। अभी लेट्स सी, जब मैं वापस जाएंगे तो मिलेंगे, वी कैन सी फर्दर। परंतु उसने तीन बातें बताई है। फर्स्ट स्टेप एग्रीकल्चरल कलैप्स, सेकंड स्टेप सोसाइटल कलैप्स, थर्ड स्टेप सिविलाइजेशन कलैप्स। हर बात बहुत लॉजिक उठा करके बताई है। जैसे कि एग्रीकल्चरल कलैप्स कहता है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद विश्व में फूड स्टॉक्स बढ़ते गए हैं, लास्ट थ्री इयर्स से डिप्लीट हो रहे हैं और उसका रिकूप नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे देशों में ड्राउट आ गया है, तो तो जो फूड प्रोड्यूसिंग कंट्रीज थी यूरोप जैसे, वहां पर फूड प्रोडक्शन 60% कम हो गया ड्राउट के कारण। ऑस्ट्रेलिया के फायर्स तो आपने सुने हैं, परंतु जैसे यूरोप में स्वीडन तो ठंडा देश, गरम ते गरम उनकी की टेम्परेचर नॉर्मली होती है समर में 21 डिग्री सेल्सियस, ये लास्ट 3 इयर्स उनकी की 25, 26, 27 डिग्री सेल्सियस, बहुत गर्मी। यहाँ की गर्मी को तो वो देख करके हैरान हो जाते, परंतु वो 26, 27 को भी बहुत गर्मी कहते हैं, उन्होंने इतना तो कभी अनुभव नहीं किया है। तो स्वीडन में फॉरेस्ट फायर्स थे, कभी ऐसे नहीं होता। इंग्लैंड में फॉरेस्ट तो है ही नहीं, वहां फॉरेस्ट तो कब से खत्म हो गए, परंतु वहां पर मोर फायर्स, मोर लैंड है, तो मोर लैंड फायर्स। तो एनीवे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन तो इंग्लैंड का बहुत कम है, तो और ये इम्पोर्ट होता है बहुत सारा खाना, परंतु कहने का मतलब फूड स्टॉक रिजर्व्स जो है वो डिप्लीट होते जा रहे हैं। तो कहता है कि अमीर लोग तो कहां न कहां से खर्च करके अपना ले लेंगे, मिडिल क्लास वाले उनों की सिंपल लाइफस्टाइल बन जाएंगे, क्योंकि फैंसी चीजें खरीद करने की मार्जिन नहीं होंगे, बेसिक लाइफस्टाइल उनों की हो जाएंगे। गरीब क्या करेंगे, गरीबों का होगा रायट्स, और रायटिंग के द्वारा सोसाइटल कलैप्स। आप लोगों ने ये सुना कि चिली में रायट्स है, सितंबर से लेकर चालू थे और नवंबर में आखिर गवर्नमेंट ने क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस कैंसिल किया कि हम नहीं कर पाएंगे, विच वॉज करेक्ट, क्योंकि दिसंबर तक भी रायटिंग वहां चल रही थी। परंतु रायटिंग का कारण क्या था, रायटिंग का कारण था कि कुछ वर्षों से वहां पर ड्राउट है, ड्राउट के कारण एक तो पानी की एनीवे कमी, परंतु दूसरा जो पानी था भी वो बिक्री हो रहा था, मींस होलसेल बिक्री गवर्नमेंट के तरफ से, मानो कि एवोकाडो फार्मर्स को पानी मिल रहा है या मल्टीनेशनल्स को पानी मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने खरीद किया हुआ है। तो जो इंडिजिनस पीपल है, जो साधारण लोग हैं, उनको पानी नहीं मिल रहा। तो रायट्स का कारण था क्लाइमेट चेंज, ड्राउट एंड इनजस्टिस, दोनों बातें। तो दोनों बातों के कारण रिजल्ट कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस चेंज होकर के अचानक ही मैड्रिड में आ गई। तो कई बातों का उथल पाथल था। सीरिया के आज तक भी न्यूज में इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट की बातें आ रही है, नेशनल तो है ही परंतु इंटरनेशनल। कुछ वर्ष पहले प्रिंस चार्ल्स ने एक डॉक्यूमेंट्री में ये बताया कि आप लोगों को मालूम है सीरिया में कॉन्फ्लिक्ट शुरू क्यों हुआ, कुछ वर्ष कॉन्फ्लिक्ट से पहले ड्राउट था, क्लाइमेट चेंज, ड्राउट के कारण फिर वहां पर सिविल वॉर शुरू हुआ। सिविल वॉर मिडल ईस्ट होने के कारण सब इंटरनेशनल पावर्स इन्वॉल्व थे, तो आज तक वो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। रेफ्यूजीज जो यूरोप में आए हैं, अगेन दैट स्टार्टेड विद सीरिया। तो जो ये बता रहा है एग्रीकल्चरल चेंज कलैप्स, उससे सोसाइटल कलैप्स, ये देख रहे हैं, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर, इट्स हैपनिंग नाउ, और उससे फिर सिविलाइजेशन कलैप्स। तो बाबा ने तो हमें 84 इयर्स से ये बातें बताई है, और हम लोग कुछ 50 वर्ष से सुन रहे हैं, कुछ 5 साल से सुन रहे हैं, परंतु बाबा ने साकार मूल्यों में बहुत क्लियर नक्शा दिया है क्या क्या हो रहा है और क्या क्या होने वाला है। तो ये जो आजकल कई लोगों का रिसर्च हो रहा है, जैसे एक और भाई है जिसको हम पहचानते हैं, परंतु वो ये भाई भी जेम बेंडल भगवान को कहता है कि आई वॉज बोर्न अ कैथलिक और अभी शायद मैं बुद्धिस्ट बनूंगा, विचार कर रहा हूँ। तो भगवान से तो बहुत दूर, परंतु अपनी रिसर्च अनुसार फिर हम जो बातें बता रहे हैं कि भगवान की शक्ति से ये परिवर्तन होगा, वो डिनाई नहीं कर सकता बट अपने दिल से कंफर्म भी नहीं कर सकता। एक और भाई जो मुझे 10 साल पहले मिला था और फिर मिला नहीं है बीच में, परंतु कल उसका पेपर हम पढ़ रही थी, चार्ल्स आइजनस्टाइन, वो अमेरिकन, जेन इज इंग्लिश ब्रिटिश, वो अमेरिकन, तो ये चार्ल्स आइजनस्टाइन। और वो भाई क्या कहता है, आज के सारे विश्व की प्रॉब्लम्स न सिर्फ क्लाइमेट चेंज की है, परंतु पॉलिटिक्स में भी ये बात आती है, इकोनॉमिक्स में भी ये बात आती है, सब बातें बहुत क्लियर प्रूव करके बताता कि एक एक बात का कैसे सब बातों से कनेक्शन है। परंतु कहता है, व्हाट इज द आंसर, द आंसर इज लव, बट आई डोंट मीन रोमांटिक लव, आई मीन लव फॉर दैट विच इज सेक्रेड। नेचर को हम सेक्रेड माने, मानव के लाइफ को हम सेक्रेड माने, जब इतना मानव के अंदर परिवर्तन आएगा, इतनी प्यार की भावनाएं आएंगे, तो हम इस विश्व को बचा सकते। तो ये जो थिंकिंग लोग हैं, बाबा ने कहा है ना कि लोगों को टच होता जाएगा, जैसे समय नजदीक आता रहेगा, क्यों आपकी बात मानने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि कई बातों में हमारे पास प्रूफ नहीं है। आत्मा, आज तक कॉन्शियसनेस की बातें बहुत चल रही है, प्रूफ हो देयर इज समथिंग कंप्लीटली सेपरेट टू द ब्रेन व्हिच इज एनर्जी। भगवान ने बताया है, अभी तक ह्यूमन रिसर्च वहां तक नहीं पहुंची है, भगवान है। Intellectual people, it's very hard for them to believe it, at least in Northern Europe and America. तो कैसे परिवर्तन आएगा लोगों के दिमाग में, बाबा की टचिंग से। बाबा की टचिंग से उनका दिमाग चलेगा, रिसर्च करने लगेंगे, उन बातों को मानने लगेंगे, बाबा की प्रत्यक्षता अवश्य होंगी। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, संगम युग की ये अंतिम घड़ियां चल रही है, बिल्कुल अंतिम घड़ियां कहेंगे, तो उसमें हम कहां तक बाबा के साथ अपना लिंक बिल्कुल शक्तिशाली क्लियर लिंक बना करके रख करके चल रहे हैं, या छोटी छोटी बातों में हम फंस जाते, दैट्स इंडिविजुअल। परंतु बाबा की प्रत्यक्षता की घड़ियां बहुत ही नजदीक है, कोई ज्यादा दूर नहीं है अभी। ओम शांति।
इतना है प्यारा।
दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक हाथ से सब दीदी का थैंक्स करेंगे। दीदी ने तो बहुत गहरी और मेन बात सुना दी कि सेवा के लिए कैसे अंदर कोई दुख नहीं रखना है और बाबा का प्यार कितना इम्पोर्टेंट है। दीदी बहुत बहुत शुक्रिया, और आप बार बार आए और इस मंच को ऐसे ही सजाते रहे। थैंक यू।